मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 29 नवंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग अर्थशास्त्र की समझ के बारे में कुछ बातें करेंगे और अर्थशास्त्र की समझ इस रूप में कि कल मैंने अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न आप सबको दिए थे जो बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल से मैंने तैयार किए थे और आप लोगों से कहा था कि आप सब इसके उत्तर अपने अपने ढंग से लिखें। आज मैं उन्हीं उत्तरों को लेकर के अर्थशास्त्र को कैसे समझा जाए इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। इस बीच में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, आपके मिजोरम में भी चुनाव हुए और चुनाव का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। मिजोरम में तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम रहा, 1-2%, क्योंकि पहले से ही वहां बहुत हाई लेवल का परसेंटेज रहा है, मोर देन 80%, तो इस बार वो 80% तक रुक गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रतिशत 75 तक पहुंच गया, जो 72 से 75, और 75% वोटिंग बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है। यहां तक कि आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों में देखिए तो वहां भी 60% से ज्यादा वोटिंग का परसेंट नहीं होता है, 60% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती, और भारत में 75% अगर वोटिंग हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो रही है, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति या मताधिकार के प्रति आप कह लीजिए जागरूकता आई है और लोग अपने घरों से निकल करके अब वोट के जो बूथ होते हैं वोटिंग के वहां जाने लगे हैं, तो लोकतांत्रिक दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा लक्षण है। इसके पीछे जो रीजन्स हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही क्लियर हैं। लिटरेसी का परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो सोशल मीडिया आ गया है उससे भी लोगों को सूचनाएं मिलने लगी हैं। सोशल मीडिया ने इस बार कुछ इस तरह के प्रयोग क्या ये कह लीजिए कि सुविधाएं उपलब्ध कराई थी कि आपको सोशल मीडिया पर ही पता लग जाएगा कि आपका बूथ कहाँ है, कितनी दूर है, उसका रास्ता क्या है, इस तरह की कुछ दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी थी। और फिर अब हमारे लोकतंत्र को भी इतने साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा जानने लगे हैं, युवा वर्ग का प्रतिशत बढ़ गया है, तो स्वाभाविक रूप से उनमें अलग किस्म की उमंग होती है। और इसका भी बहुत बड़ा रोल है जिसे आप कह सकते हैं कि लोगों में अब ये लगने लगा है कि नहीं, सरकार के बारे में हमें अपनी राय देनी ही चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लिटरेसी रेट बढ़ा ही है, तो ये बहुत से कारण है जिनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन आप देखते हैं कि कंपेन चलाता है, दूसरे संस्थान भी, खासकर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एनजीओज हैं कि आप जाइए मताधिकार करिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स पर भी इस तरह की चीजें आ रही थी कि आपको जाना चाहिए, वोट दे करके आना चाहिए, तो इन सब के प्रभाव स्वरूप वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है। बस ये छोटी सी खबर थी, इसे आप एक लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रमाण मान सकते हैं। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स वो सार्क सम्मेलन को लेकर के है और इसको लेकर के मैं आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। न्यूज में भी ये बात थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से कहा कि सार्क सम्मेलन होने जा रहा है वहां और भारत भी इसमें आए। सामान्यतः सार्क को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है, इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यह है कि भारत ने यह कह करके इनकार कर दिया है कि जो सार्क सम्मेलन के बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सारे देश मिलकर लेते हैं, कि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, तो अकेले पाकिस्तान कैसे उसने फैसला कर लिया कि सार्क सम्मेलन की घोषणा कैसे उसने कर दी, सभी सदस्य मिलकर। और यह सार्क सम्मेलन का नियम है, आप कह लीजिए रूल है, कि जो भी फैसले होंगे वो सभी सदस्यों की सहमति से होंगे, अगर एक भी सदस्य उससे सहमत नहीं है किसी भी प्रपोजल से तो वह मान्य नहीं होगा। कह लीजिए कि काफी कुछ सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, उसमें जो वीटो पावर के सदस्य हैं, कुछ उसी तरह का मामला आपको यहां भी दिखाई देगा। दो छोटी छोटी खबरें हैं फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी छोटी खबरें। पहला तो यह है कि अरविंद सक्सेना जी को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, जो बेसिकली इंडियन पोस्टल सर्विस के ऑफिसर थे, मैं आपको बता दूं कि इंडियन पोस्टल सर्विस भी आपके सिविल सर्विस का ही पार्ट होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल, आपके सिविल अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस होते हैं, उसी तरह से इंडियन पोस्टल सर्विस भी एक सर्विस होती है, ये उसके मेंबर रहे हैं। एक और खबर इससे एक दिन पहले थी, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, और वो है कि सुनील अरोड़ा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। 2 दिसंबर को अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ओपी रावत जी, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद सुनील अरोड़ा जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये छोटी छोटी खबरें हैं जो आपकी जानकारी में मुझे लगता है कि होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर बात करते हैं। एक बात मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि मुझे एक मेल मिला है तेजिंदर सिंह का, जो हमारे 9th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तेजिंदर सिंह, आपने जिस तरीके से इन प्रश्नों के बारे में मुझे सूचित किया है वो परफेक्टली ऑल राइट है, बहुत अच्छे हैं, भाषा उनकी बहुत ही सुंदर है। मतलब आप कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि इन प्रश्नों के उत्तर जिस तरीके से दिए जाने चाहिए आपने बिल्कुल इनके उत्तर उसी तरीके से दिए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं भी कि आपके प्रिपरेशन की जो लाइन है वो परफेक्टली इसी तरीके से बनी रहे, बल्कि और भी ज्यादा बेहतर होती चली जाए। खैर मित्रों, तो अब मैं प्रश्नों पर आता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, मैं सीधे सीधे उत्तर पर नहीं आ रहा हूं, है ना, मैं इन प्रश्नों को समझा रहा हूं। देखिए, जो पहला प्रश्न था इसका, इसकी शुरुआत विश्व में जो कच्चे तेलों की दाम में गिरावट आ रही है उसको लेकर के है, है ना, कि कच्चे तेल यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी कीमतें गिर रही हैं, लग रहा है कि $55-60 प्रति बैरल तक उसकी कीमत हो जाएगी। और इसके पीछे पृष्ठभूमि यह है कि भारत जितना भी कच्चा तेल यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसका 80% इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। जब हम दूसरे देशों से मंगाते हैं तो बट नेचुरल कि उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है, राइट, वो रुपए में नहीं लेंगे। और डॉलर में जो हम भुगतान करते हैं तो साल भर का लगभग ये माना गया है कि $12,500 करोड़, इतना धन हमें, या ये कह लीजिए इतनी विदेशी मुद्रा हमें पेट्रोलियम पदार्थों पर खर्च करनी पड़ती है, राइट, अभी के रेट पर। चलिए अभी के रेट हम मान लेते हैं, चलिए $75 प्रति बैरल, तो अगर वो गिर के $60 प्रति बैरल हो जाती तो 20-25% उसमें गिरावट हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ, इस समझाने के लिए मैं अब आपसे कह रहा हूं, है ना, अब समझिए इसको। इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद आप देखिए कि सारी चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी हम दे रहे हैं $12,500 करोड़, मान लीजिए कि इसमें 25% की कमी हो गई तो $3,500 हमें कम देने पड़ेंगे, तो 12,500 में से आप 3,500 घटा दीजिए तो इसका मतलब हुआ कि हमें $9,000 करोड़ देने पड़ेंगे, यानी कि $3,500 करोड़ हमारे पास बच जाएंगे, हमारे पास पैसा बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास पैसा बचा, एक तो हमारे पास पैसा बच गया, तो $3,500 करोड़ हमारे पास बच रहा है, $3,500 करोड़ किसके पास बच रहा है, सरकार के पास बच रहा है, यानी कि सरकार का जो खजाना है जिसे हम राजकोष कहते हैं, राजकोष, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है भाई, सरकार कमाती है और खर्च करती है, जैसे हमारा अपना घाटा होता है, व्यापार का घाटा होता है, सरकार का घाटा होता है, सरकार कमाती है, टैक्स वगैरह से कमाती है, इसके बाद खर्च करती है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को सैलरी दे रही है, सड़कें बना रही है, अस्पताल खोल रही है, यहां खर्च कर रही है। तो कमाया उसने 100 रुपए और खर्च कर दिए उसने 105 रुपए, तो 5% राजकोषीय घाटा हो गया, ठीक है। तो ये बजट में सब सरकार अपना विवरण दे देती है। अब उसके पास $3,000 करोड़ बच गए जो उसने दिया था कि इतना हमारा खर्च हो जाएगा, यानी कि आपने इमेजिन किया था कि लड़की की इस साल मुझे शादी करनी है और उसमें मेरे 10 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन पता लगा कि उसमें आपके 7 लाख रुपए ही खर्च होते, 3 लाख रुपए बच गए ना, तो आप कर्ज ले रहे थे 10 लाख रुपए, तो अब आपको कितना कर्ज लेना पड़ेगा, 7 लाख रुपए। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा कम हो गया, सरकार के पास 3,000 करोड़ रुपए बच गए। तो अब सरकार 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे अच्छे कामों में करेगी ना, बेहतर कामों में करेगी, अस्पताल खोलेगी, सड़क बनाएगी, जो भी करेगी, तो राजकोषीय घाटा सरकार के पास पैसा आ जाएगा। तो बटने चरल है कि उसका राजकोषीय घाटा के बारे में उसे सोचना चाहिए। दूसरी चीज अब आप देखिए कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो गए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो गए तो गाड़ियों के किराए सस्ते हो जाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी। तो जब ये चीजें सस्ती हो जाएंगी तो जो इंडस्ट्री है वो जो चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं उनको सस्ती बिजली थोड़ी सी मिलने लगेगी, तो जो प्रोडक्ट करेंगे वो चीज सस्ती हो जाएगी। प्रोडक्शन के बाद उस सामान को पूरे देश में भेजा जाता है, परिवहन लागत कम हो जाएगी, तो चीजें बाजार में थोड़ी सी सस्ती कीमत पर मिलने लगेंगी। जब चीजें सस्ती कीमत पर मिलने लगेंगी तो बट नेचुरल है कि हम थोड़े से ज्यादा खरीदने लगेंगे कि भैया सस्ती मिल रही है खरीद लो। जब चीजें ज्यादा खरीदी जाने लगेंगी तो कंपनियों के ज्यादा उद्योगों को ज्यादा फायदा मिलने लगेगा, उद्योगों का लाभ बढ़ जाएगा, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लोग फिर भारत में ज्यादा शेयर खरीदने लगेंगे। ऐसे में बैंक भी सोचेगा यार कि ये तो अच्छा सिनेरियो बन रहा है औद्योगिक विकास के लिए, अच्छा सिनेरियो बन रहा है क्योंकि चीजों की कीमतें कम होंगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो उद्योग कमाई करेंगे। तो चलो एक अच्छा मौका है, बैंक रेट कम कर दो, बैंक रेट हम कम कर देंगे, क्योंकि उद्योग अब सोच रहे हैं उद्योगपति कि नहीं नहीं अब तो पेट्रोलियम सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया है तो हम उद्योग लगा करके कमा सकते हैं। लेकिन वो कमाएंगे तब ना जब उनके पास पैसा हो, कैपिटल भी तो होनी चाहिए, तो कैपिटल कौन देगा, बैंक देगा। तो नहीं नहीं इनको कैपिटल दो, कैपिटल दो ताकि नए नए उद्योग लगाएं। तो कैपिटल दो तो अगर आप हाई रेट इंटरेस्ट पर देंगे तो वो तो नहीं लेंगे कि भैया इसका तो ब्याज ही इतना ज्यादा हो गया। तो जब आप ब्याज दर कम कर देंगे तो उद्योग प्रोत्साहित होंगे कि नहीं यार चलो पैसा लो, उधार लो और उद्योग लगाओ। तो बट नेचुरल है कि फिर बैंक भी सोचेंगे कि थोड़ा सा ब्याज दर को कम किया जाए। अब आप देखें कि जब हम अब इसको इस एक मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं और अब आप इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रश्न मैंने दिए हैं इनमें से आप समझिएगा कि आपकी समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है। अब आप देखिए कि जब विदेशियों को लग रहा है कि यार भारत में तो जो अब इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगी, मतलब अब इंडस्ट्री का फायदा बढ़ेगा, तो जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं वो भारतीय इंडस्ट्री के शेयर खरीदेंगे। देखिए आप डूबती हुई नाव में तो नहीं बैठना चाहेंगे, जो नाव अच्छे से पार पहुंचा दे उसी में बैठेंगे ना। तो जो इंडस्ट्री घाटे में होगी उसका शेयर आप नहीं खरीदेंगे, जब इंडस्ट्री फायदे में रहेगी जनरली आप उसके शेयर खरीदेंगे, राइट। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं उद्योगों में तो जान आ रही है, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो भैया इसके शेयर खरीदो, तो उसके शेयर खरीदने शुरू कर देंगे। अब जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको शेयर खरीदने के लिए रुपए चाहिए, भारत में तो आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो रुपया में ही खरीदेंगे, लेकिन उनके पास तो रुपया है नहीं, उनके पास तो डॉलर है। अब वो क्या करें, तो भारत में वो डॉलर भेजेंगे और बदले में रुपया मांगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर की सप्लाई हमारे यहां बढ़ जाएगी और रुपए की मांग बढ़ जाएगी। डॉलर हमारे पास आ रहा है और वो कह रहे हैं हमें रुपया दो, हमें रुपया दो, और हमारे पास 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ डॉलर ये भी बच गया है जो हम पेट्रोल में लगाते, तो हमारे पास डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और रुपए की मांग बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, रुपए महंगा हो जाएगा, यानी कि हमारा रुपए मान लीजिए अभी एक डॉलर के बराबर 75 रुपए है तो पता लगा कि वो एक डॉलर के बराबर 70 रुपए हो गया। अब जब एक डॉलर के बराबर 70 रुपए हो गया तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जोड़ करके देखिए कि हमारे इम्पोर्ट का क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट का क्या होगा। अब इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, है ना, क्योंकि अब वक्त हो चुका है उसके बारे में अब मैं ज्यादा बात करने की स्थिति में मित्र नहीं हूं, लेकिन मैंने काफी चीजें जो चार प्रश्न थे उनको समझाने के लिए बेसिक्स के रूप में आपके सामने बातें रखी हैं, बेसिक्स जो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स हो सकती इनको समझने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं वो मेरी बातों को शायद और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, समझने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी सी लगी होंगी, सीधे सीधे बातें तो है नहीं, अर्थशास्त्र की बातें कुछ थोड़ी सी उलझी हुई सी तो होती ही है, लेकिन इतनी उलझी हुई भी नहीं होती है कि इस उम्र में आकर के आप उन्हें न समझ सके। तो आप थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डालें, डेफिनेटली बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और अब आप इन प्रश्नों को देखें, समझने की कोशिश करें और इनके उत्तर लिखने की भी कोशिश करें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज उत्तर लिखकर आप अपने पास ही रखें, मेरे पास न भेजें। आपस में आप लोग एक दूसरे को दिखा करके उन्हें चेक करवा लें मित्रों, क्योंकि मेरे लिए व्यावहारिक रूप में उनको पढ़ करके और जवाब दे पाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सुजीत कुमार पटना से, अंकित कुमार सचान कानपुर उत्तर प्रदेश से, प्रशांत कुमार सिंह बंका बिहार से, राजेश कुमार चंडीगढ़ से, तेजिंदर सिंह पंजाब से, जिनका नाम मैं अभी ले चुका हूं, प्रणव राज बुद्ध प्रिय रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और सुशील बढ़िया सर अजमेर राजस्थान से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।